इसलिए आज के इस कठवाले के श्लोक का अर्थ समझकर हम अपने जीवन में श्रेयस का वर्णन करें। प्रेयस का वर्णन करने में तो कई जन्म बर्बाद हो गए, कई सदियां बर्बाद हो गई, कई युग बर्बाद हो गए। आज लगता ऐसा है कि एक आदमी धन वैभव सुख संपत्ति में है तो अपने को भागशाली मानता, लेकिन दूसरे उनको बोलते ये भागशाली। तो ऐहिक वस्तुएं मिलने पर अगर अपने को कोई भागशाली मानता है तो गलती में है, लेकिन जो उनको हम भी भागशाली मानते तो हम डबल गलती में। जो इंद्रियों के विषय या इंद्रियों के सुख या इंद्रियों के भोग जो हैं, वो मिलना ही अगर भाग्य है तो फिर तो कीट पतंग को बकरा को बहुत भोग मिलते हैं, जंतुओं को निसंकोच उनकी योनि के अनुसार भोग मिलते हैं, वो भागशाली हुए। शिव जी तो कहते हैं उमा तिनके बड़े अभाग जे नर हरि तजी विषय भजे। जो आत्म सुख छोड़कर विषयों का सुख लेना चाहते हैं उनके बड़े अभाग है। ऐसा कोई विषयों का सुख नहीं कि भोक्ता को दीनहीन न बना दे। इसलिए श्रेयस और प्रेयस दोनों आते हैं, उनमें से हम निरशिर की नाई विवेक करके श्रेयस को पकड़े और प्रेयस की लापरवाही करें। होगा क्या कि श्रेयस के रास्ते चलते आत्मबल बढ़ जाएगा। दो भाई थे, पिता गुजर गए, बड़े भाई ने राज्य संभाला और छोटा भाई फकीर हो गया। वो श्रेयस के रास्ते चला, वो प्रेयस के रास्ते चला, खा पी के मोटा ताजा तो हुआ बड़ा, छोटा जरा दुबला रहा। क्यों? आत्म साक्षात्कार करके जब लौटा तो राज्य में एक झोंपड़ी बांध के नदी किनारे रहने लगा। धीरे धीरे लोग संपर्क होते, लोगों को शांति मिलने लगी, आनंद मिलने लगा, क्योंकि धीर पुरुष के नजीक जाते ही मन के संकल्प और विकल्प कम होने लगते हैं। मन के संकल्प विकल्प कम होते ही आत्म सुख प्रकट होने लगता है। तो उस महापुरुष के नजीक जाके लोगों को लाभ होने लगा। लोगों को लाभ हुआ तो धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैल गई। आखिर राजा ने गुप्तचरों को सुना कि कोई साधु आए हैं और बहुत लोग उनको मानते हैं, तो गुप्तचरों को भेजा कि जांच करो वो साधु वास्तव में कहां के हैं, कैसे हैं, कोई दूसरे राज्य के जासूस तो नहीं है, इनका जन्म स्थान कहां है, इनके माँ बाप का नाम क्या है, ऐसा जरा जांच करो। जांच करके गुप्तचरों ने बताया कि जन्म स्थान तो इनका यही है और ये आपके सगे भाई लगते। मेरे भाई लगते और ऐसे भिखारी होके रहे, लोगों को पता चलेगा तो मेरी इज्जत का पंचर हो जाएगा। एने शू था तू वादो नहीं, पर मारा अहम ने प्रेयस हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा चिंतित रहता है। सुबह सुबह सूर्योदय हुआ है, राजा भाई आया है और फकीर भाई को बोलता है कि देख अपने कुल का नाम बदनाम कर दिया तूने। कहां तो मैं राज्य कर रहा हूं, मेरी हुकूमत में सब जी रहे हैं, जिसको जैसा आज्ञा करता हूं लोकपाल, और कहां तू एक फटा टाट सी रहा है, फटी गोदड़ी सी रहा है सुबह सुबह, और रोटी खाने के लिए भिक्षा करता है। अब तो सुधर भाई, सुधर सुधर सुधर, श्री राम, तू तो बर्बाद हो गया। अब मैं देखो कैसा आबाद हो गया हूं। तो प्रेयस के रास्ते जाने वाला व्यक्ति अपने को इन पदार्थों से आबाद मानता है, अपने को इन धन से सत्ता से बड़ा मानता है। धन और सत्ता से अगर तुम बड़ा हो तो धन और सत्ता चली गई तो तुम्हारा बड़पन चला गया। तो तुम्हारा बड़पन तो था नहीं, धन का था बड़पन, सत्ता का बड़पन था। वस्तुओं के मिलने से अगर आदमी बड़ा हो जाता है तो आदमी का अपना बड़पन तो नहीं हुआ, वस्तुएं बड़ी हुई। लेकिन प्रेयस के रास्ते जाने वाले को ये विवेक ही नहीं रहता है कि वस्तुएं अधिक होने से अगर हम बड़े हो गए तो हम बड़े नहीं हैं, वस्तुएं बड़ी हो गई। धन होने से हम बड़े हो गए, सत्ता आने से हम बड़े हो गए, गहने आने से, कपड़े बढ़िया पहनने से हम बड़े हो गए, तो हमारा बड़पन तो नहीं हुआ, ही तो कपड़ों का बड़पन हुआ। कपड़े जब नहीं रहेंगे तो बड़पन गायब, बढ़िया कपड़े नहीं है तो फिर बढ़ियापन गया, धन नहीं है तो फिर हमारा बढ़ियापन गया, सत्ता नहीं है तो हमारा बढ़ियापन गया, तो फिर हमारा तो था ही नहीं, ये तो सत्ता का बढ़ियापन था, धन का बढ़ियापन था। लेकिन प्रेयस के रास्ते जाने वाले व्यक्तियों की मति मूड हो जाती है, और मूढ़मती ने कहा अपने छोटे भाई को कि तू तो बर्बाद हो गया, हमारी आज्ञा सब मानते हैं, तेरे को तो कोई पूछता भी नहीं। छोटे भाई ने फकीरी मौज में आकर हाथ में जो सुई थी वो दरिया में फेंक दी, सागर में। बोला तुम्हारी सब आज्ञा मानते हैं तो जरा सुई को तो निकलवा दो। वो बड़ा भाई मथा खुजराने लगा, कह रहे यार सुई कैसे निकलेगी। बोले जब तुम्हारी सब लोग आज्ञा मानते तो एक जरा सी सुई नहीं निकलवा सकते तो क्या आज्ञा मानते। छोटा भाई आ गया अपने श्रेयस की निष्ठा में, सुई को कहा कि चल आ जा। देखते ही देखते वो मछली के मुंह में धागा सुई लटकाती हुई आई। छोटे भाई ने सुई ले ली, बड़े को दिखाया कि देख आज्ञा तो हमारी मानते, तुम्हारी क्या मानते। फिर भी अगर तू मुझे बर्बाद मानता है तो मैं बर्बाद हूं तो ठीक हूं, और तू आबाद है तो तू आबाद रहे। तेरी आजादियां सदके सदके, मेरी बर्बादियां सदके सदके। मैं बर्बादे तमन्ना हूं, मुझे बर्बाद रहने दो। मैं इच्छा आकांक्षाओं से वासनाओं से बर्बाद हूं, वासनाएं बर्बाद हो गई मेरे हृदय में, इच्छाएं बर्बाद हो गई, संसार के सुख की आकांक्षा जो पकड़ या दौड़ है वो बर्बाद हो गई। मैं तो सहज में जीता हूं, सहज में खाता हूं, सहज में बोलता हूं, सहज में चलता हूं। अंदर से कोई दौड़ धूप नहीं है, अंदर से विश्रांति, उसीलिए हर परिस्थिति में हम मौज में है। जय जय। और तुझे अंदर से दौड़ धूप है, उसीलिए हर परिस्थिति में तू परेशान है। अगर तू परेशान होते हुए भी अपने को आबाद मानता तो तू आबाद रहे। और हमें इच्छाएं नहीं है और हमें तू बर्बाद मानता है तो हमारी इच्छाएं बर्बाद हो गई, वासनाएं बर्बाद हो गई, जन्म मरण की लिस्ट बर्बाद हो गई। तो जीव की जहां इच्छा होती है वहां वो जाता है। अगर चाट खानी होती है तो चौपाटी पे जाता है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परमानंद पाना होता है तो वो सत्संग में जाता है। तो हम वरण किसका करते हैं, हम श्रेयस का करते या प्रेस का करते हैं? लालीपॉप या गोली हमें अच्छी लगती है क्या कि गिन्नी का मूल्य हमें दिखता है? तो ये जहां तक हमारा वरण ठीक न होगा, हमारी पसंदगी उचित नहीं होगी, तहां तक ऊंचे से ऊंचे महात्मा भगवान संत अवतार कारक पुरुष भी मिल जाए तो भी आदमी प्रेस के तरफ जाने वाला आदमी भगेड़ू आदमी प्रेस के तरफ भागता रहेगा। लेकिन जो श्रेयस का पुजारी है उसको हजार हजार लात लग जाए, हजार हजार विघ्न और बाधाएं आ जाए, फिर भी वो लक्ष्य समझता है ऊंचा। श्री राम। तो ईश्वर के नाते अगर हम जीते हैं तो संसार की प्रतिकूलताएं हमारा दिल नहीं हिला सकती, लेकिन हम संसार के नाते जीते हैं तो अनुकूलता रही तब तक हमारा अरस परस स्नेह रहेगा, जरा सा प्रतिकूलता आई तो स्नेह टूट जाएगा। तो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, एक तामस श्रद्धा, दूसरी राजस श्रद्धा और तीसरी सात्विक श्रद्धा। तामस श्रद्धा भोग प्रधान, परिस्थितियां प्रधान होती है, भोग में सहयोग मिला तो एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहा, भोग में अगर विघ्न पड़ा तो प्रेम विरोध का रूप ले लेगा, ये तामसी श्रद्धा है। राजस श्रद्धा है कि अपनी वाहवाही होती रही, अपने अनुरूप घटना घटती रही तो बनी रही श्रद्धा, अपने अनुरूप नहीं घटी तो किनारा हो गया, चुपचाप बैठ गए, ये राजस श्रद्धा है। और सात्विक श्रद्धा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। श्री राम। चाहे सुख दे दे चाहे दुख दे दे, हमें दोनों है स्वीकार, हे मेरे करतार, ये सात्विक श्रद्धा है। तो सात्विक श्रद्धा, गोपियों की सात्विक श्रद्धा थी, सुदामा की सात्विक श्रद्धा थी, तो हर परिस्थिति में वो धन्यवाद निकलता है। अगर राजसी श्रद्धा है तो फरियाद भी करती, अतामसी श्रद्धा है तो एकदम विरोध करती। कई लोग शिवजी की पूजा करते, काली की पूजा करते, जो तामसी श्रद्धालु हैं वे कभी कभी शिवजी का फोटो तोड़ देते, काली की मूर्ति फेंक देते हैं कि इतना इतना साल भजन किया और अभी अट्ठे से दुआ लगा ही नहीं, जय काली जा। लेकिन सात्विक श्रद्धा जब बनती है तो श्रेयस लक्ष्य होता है, गुणातीत होने का लक्ष्य होता है। गुणातीत होने का लक्ष्य होता है तो विघ्न बाधाएं तो गुणों में आते, गुणों के सिर पर पैर रखता हुआ वो यात्रा कर लेता है। तो दासुर को वन देवी ने समझाया कि हे पुत्र, तेरा पिता चला गया, लेकिन तेरा पिता कहां गया? उनका शरीर पांच भूतों का था, पांच भूतों में लीन हुआ, लेकिन उनका आत्मा तो परब्रह्म स्वरूप था, वो तो परब्रह्म में लीन हुआ। तू उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर, तप कर, ध्यान कर। वन देवी के वचन सुनकर दासुर को जरा आश्वासन मिला है। अब पिता की उत्तर क्रिया उसने की, बाद में अपने मन को एकाग्र करने के लिए, तपस्या करने के लिए उसने जगह ढूंढी। देखता है तो हर जगह में कोई न कोई गुण दोष मिलते हैं, कहीं असुर मरे हुए हैं तो कहीं मनुष्य मरे हुए हैं, कहीं कहीं भोग भोगे हुए हैं। पृथ्वी पे कोई शुद्ध जगह नहीं दिखी, एक इंच भी पूर्ण शुद्ध पृथ्वी नहीं दिखेगी। अगर हम श्रेयस की दृष्टि से नहीं देखोगे तो एक इंच भी शुद्ध पृथ्वी नहीं मिलेगी। शुद्ध में शुद्ध परमात्मा है, उसका चिंतन करके बैठ जाओ तो कितनी भी अशुद्ध पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी। लेकिन महाराज, वैसे अगर शुद्धि अशुद्धि का विश्लेषण करोगे तो कहीं शुद्ध पृथ्वी नहीं मिलेगी। और पृथ्वी पूरी छान मारी दासुर ने, लेकिन कहीं कीड़ी मरी हुई, कहीं मकोरा मरा हुआ, कहीं उधई मरी हुई, कहीं भोग भोगे हुए, कहीं असुर मरे हुए, कहीं कीट मरे हुए। कभी न कभी कोई कीट मरा है तो अशुद्ध हुई, मसान हो गया और क्या। जहां कीट मरते हैं, मरते ना, कोई ना कोई जंतु मरते, बैक्टीरिया भी तो मरते हैं, तो मसान हो गया। तो ऐसे मसान में बैठ के क्या भजन करना, क्या तप करना। फिर इसने सोचा कि मैं वृक्ष की डाल पर जाऊं, लेकिन शरीर भारी है, वृक्ष की डाल पर डाल गिर जाए लोग देखें। उसने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में अपने मुंह का मांस काट काट के यज्ञ देवता को अर्पण किया ताकि हमें सूक्ष्मता प्राप्त हो जाए। यज्ञ देव ने सोचा कि ये ब्राह्मण दासुर ये मुख का मांस मेरे मुख में आ जाए उचित नहीं, वो साकार होकर प्रकट हुए। बोले, पुत्र तुझे क्या चाहिए? बोले, अग्निदेव अगर आप प्रसन्न हुए हो तो मेरी अर्घ्यपाद से सेवा स्वीकार करो। विधिवत अर्घ्यपाद से उनकी सेवा की दासुर ने अग्निदेवता की। अग्निदेवता की सेवा करके उनको प्रसन्न किया, सत्कार किया उनका। अग्निदेवता ने कहा कि बोल, कुछ मांग ले। अग्निदेव, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, कि वृक्ष की आखिरी ऊंचे में ऊंची टहनी के एक पत्ते पर भी मैं बैठना चाहूं तो बैठ सकूं, क्योंकि मुझे तप करना है। अग्निदेव ने वरदान दिया है वो मस्तु। अग्निदेव के वर के प्रभाव से वो सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर के बल से हिमालय के एक सुहावने सुंदर वृक्ष पर, ऊंची टहनी के एक पत्ते पर विराजमान हुआ। और मन ही मन से उसने 10 वर्ष तक देवों का, यज्ञ पुरुष का अश्वमेध यज्ञ किया और कोई यज्ञ किए, मन ही मन से तप करता रहा और मन में ही भ्रमण करता रहा। प्रारंभ में तो उसने आकाश के तरफ निहारा, वृत्ति को देखा, फिर उसी वृत्ति को संकेत लिया मन में, क्योंकि मन ही से तो निकली है, मन में संकेत लिया। और मन ही मन में वो 10 वर्ष तक तप करता रहा, वृत्ति को पूजा पाठ में, जप में, नियम में, होम में, हवन में, यज्ञ में, याग में, मानस पूजा में अपने मनोवृत्ति को अंदर ही अंदर घुमाता रहा। महाराज, 10 वर्ष हुए, तपस्या बढ़ गई, बहिर्मुख वृत्ति नहीं हुई, अंतर्मुखी अंदर मानस पूजा में ही मन की वृत्ति घूमती रही, इंद्रियों में या जगत में आई नहीं। तपस्या खूब पावरफुल हो गई, चित्त शुद्ध हो गया। हम देव की अर्चना पूजना करते हैं, उससे मानस पूजा में ज्यादा लाभ होता है। अर्चन पूजन करने के लिए तो पदार्थों में वृत्ति जाती है, भोग में वृत्ति जाए उसकी अपेक्षा देव की पूजा में, पूजा के लिए पदार्थों में वृत्ति जाती तो अच्छा है। हकीकत में देवता को आपके पदार्थ की, या शिव जी को आपके पदार्थ की, या विष्णु को आपके पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पदार्थ में वृत्ति जाती है उस वृत्ति को पदार्थ में जाने की आदत है तो वो पदार्थ भगवत अर्पण करने का भाव करो ताकि पदार्थ वृत्ति में न रहे भगवान वृत्ति में रहे। इसलिए भगवान की पूजा अर्चना सेवा है, नहीं तो पंचामृत की क्या भोलानाथ को जरूरत है, या जलाशय की जलधार की शिवजी को क्या जरूरत है, या भगवान विष्णु को दिए की क्या जरूरत है, धूप की क्या जरूरत है भगवान विष्णु को। फिर भी हमारी पदार्थाकार वृत्ति है, पदार्थाकार वृत्ति को ईश्वराकार बनाने के लिए हम पदार्थों का उपयोग करके सेवा पूजा करते हैं। लेकिन इससे भी बढ़िया सेवा पूजा तो ये मानस पूजा है। तो मन ही मन उसने अश्वमेघ यज्ञ की रचना की, खूब ब्राह्मणों की सेवा की, यज्ञ में दान दिया, होम हवन किया, अश्व छोड़ा, अश्व घूम कर आया, स्वतंत्र हुआ, दो प्रोग ऐसे यज्ञ किए, यज्ञ पुरुष की सेवा की, देवताओं का पूजन किया, यजन किया, ब्रह्मवेताओं का पूजन किया, ऐसे करते करते ब्रह्मज्ञानियों का, ब्रह्मवेताओं का, देवताओं का, इनका सबका पूजन यजन करते करते उनका अंतःकरण 10 वर्ष में एकदम शुद्ध हो गया। 10 वर्ष में अंतःकरण शुद्ध हुआ है। मानस पूजा करने से 10 वर्ष में अंतःकरण शुद्ध हुआ है, लेकिन आत्मचिंतन बार बार सुने या आत्मज्ञान की बात बार बार सुने और उसी बात को बार बार विचारे तो आज 10 वर्ष की अपेक्षा भी जल्दी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध में शुद्ध तो आत्मा है, परमात्मा है। दासुर ने मानस पूजा के द्वारा 10 वर्ष में मन को शुद्ध किया। इतने में कोई वन रानी आई और उसने उनका प्रणाम आदि से, पूजन आदि से उनका चित्त अपनी तरफ आकर्षित किया। दासुर ने पूछा, तू कौन है? बोले, देवलोक में वन रानियों का उत्सव हो रहा था और फिर उत्सव में पुष्प बिखेरे गए और जिस जिस को फूल मिला उसको गर्भ रहा और बच्चे हुए, लेकिन मैं अभागी पुत्र भागी नहीं हूं, पुत्र बिना की हूं। हे तपस्वी, आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तो जो संसारी लोगों को बड़े बड़े यत्न से भोग नहीं मिलते हैं वो धीर पुरुष को तो बिना बुलाए मिलते हैं। तो मैं आपके चरणों में आई हूं पुत्र की इच्छा से, आप मेरा भर्ता बने। बोले, ये तो नहीं हो सकता है। आज ही नजारे की तो दासुर ने एक फूल दे दिया। बोले, ले ये पुष्प ले ले, इस पुष्प को रख। इसने वासना व्यक्त की। बोले, नहीं तो मैं लकड़ियां जला के जल मरूंगी, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं अग्नि स्नान करूंगी। श्री राम। वन रानी ने कहा, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं अग्नि स्नान करूंगी। अगर काम दबता है ना तो क्रोध होता है, फिर अग्नि स्नान का भाव। कामनाएं दबती है ना तो फिर जलन होती है अंदर, मैं अग्नि स्नान करूंगी। दासुर ने कहा, अच्छा ये फूल ले जा, तेरे को पुत्र होगा ही, लेकिन अग्नि स्नान की इच्छा की है उसलिए तेरे पुत्र का स्वभाव थोड़ा क्रोधी होगा, अग्नि होगी उसके चित्त में, और जब तक आत्म विचार नहीं करेगा तब तक ये अग्नि दाह उसके चित्त में रहेगी। आत्म विचार करेगा तो आत्मज्ञानी होकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, सब दूसरों की भी दाह समाप्त करने का सामर्थ्य आ जाएगा। ये भी मेरा वरदान है। वन रानी ये वरदान प्राप्त करके पुष्प लेकर चली गई और महाराज एक महीने के अंदर ही शुद्ध चित्त होता है ना, उसका संकल्प बलवान होता है। आप अपना जितना प्रेयस के तरफ मन है उतना हम लोगों का संकल्प दुर्बल होता है, और जितना मन श्रेयस के तरफ होता है उतना संकल्प बलवान होता है। तो जितना चित्त शुद्ध होता है उतना उसमें सत्य संकल्प होता है, और जितना मलिन चित्त होता है उतना उसके संकल्प का प्रभाव नहीं होता है। तो शुद्ध जगह जो तीर्थ है वहां जाकर लोग यज्ञ याग करते या पिंडदान करते हैं, क्योंकि शुद्ध जगह है। शुद्ध जगह के प्रभाव से शुद्ध संकल्प होगा, शुद्ध मन होगा, शुद्ध मन होगा तो संकल्प करेंगे तो उनका कल्याण होगा। इसलिए हम गया में या तीर्थों में पिंड होम हवन आदि जाके करते हैं या दूसरे के कल्याण का काम करते हैं। तो दासुर का शुद्ध चित्त था, शुद्ध चित्त में संकल्प उठा और वो एक महीने के अंदर उसको बालक हो गया। अपने को ऐसा ही आश्चर्य लगता है, लेकिन सारी सृष्टि का जो मूल आधार जो है परब्रह्म परमात्मा है। उस परब्रह्म परमात्मा में अगर प्रेयस नहीं है और ज्यों की त्यों अवस्था है तो उस भ्रुकुटी विलास सृष्टि लाए हुए। एक संकल्प मात्र से जब सृष्टि बन सकती है तो एक बेटा बन गया तो क्या बड़ी बात। जय जय। तो जो प्रेयस के तरफ जाते ने उन लोगों को ये बातें आश्चर्यकारक लगती है, लेकिन जो श्रेयस के तरफ यात्रा कर चुके हैं उनको इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। तो जितना जितना प्राणी भोग की इच्छा करता है, जगत की इच्छा करता है, तुच्छ वस्तुओं की इच्छा करता है, उतना उतना दीन हो जाता है और अपना सामर्थ्य खो बैठता है। और जितना जितना जगत के लिए लापरवाही करके आत्मरामी होता है उतना उतना उसको अपनी गरिमा अपनी सामर्थ्य की फिर पुनर्स्मृति होती है। दासुर के संकल्प से उस वन रानी को बालक हुआ। अब बालक 10 वर्ष का हुआ। मां ने देखा कि जिस ऋषि के प्रसाद से उपदेश से ये बालक का जन्म हुआ है, अगर ये उन्हीं के चरणों में दे दूं तो ठीक होगा। अपने बच्चे को लाई और बोला के हे ऋषिवर, मुझे तो आप नहीं रखते लेकिन ये आपकी कृपा प्रसादी जो है, आपके संकल्प से जो बालक हुआ, इसको आप ज्ञातज्ञ करिए, इसको ज्ञानी बनाइए, इसको श्रेयस मार्ग का उपदेश दीजिए। दासुर उसी वट वृक्ष पर हिमालय में एकांत में अपने पुत्र को बिठाकर साकार रूप लेकर उपदेश देने का प्रारंभ करते हैं। तो वहां से वशिष्ठ जी गुजरते हैं तो वशिष्ठ की दृष्टि पड़ती, तो वट वृक्ष के करीब से आवाज आ रहा है वृक्ष से, तो हे राम जी, दासुर ने अपने पुत्र को उपदेश देना प्रारंभ करा। अपने पुत्र को कहते हैं कि हे पुत्र, तुझे ज्ञातज्ञ करने के लिए मैं तुझे एक भविष्य कथा कहता हूं। भविष्यनगर का उत्थान राजा का बड़ा विशाल राज्य था और उसकी सेना इतनी बड़ी भारी थी कि शत्रु से कांपते थे। उस राजा का तो बड़े बड़े देवता लोग असुर सुर यजन पूजन करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस राजा के कहने में चलते थे, टहल में चलते थे। वो ऐसा महाप्रतापी राजा हो गया। तब दासुर पुत्र ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहते भविष्य नगर जो बना ही नहीं और बड़ा विशाल राजा हुआ, इस वचनों ने तो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। तब दासुर प्रसन्न हुआ कि तेरी बुद्धि जरा विवेक वाली है। जी महाराज, हां महाराज करके कथा नहीं सुनते, सुनने के बाद जरा बुद्धि का उपयोग करता है। बैठ। अपना चित्त जो है परब्रह्म परमात्मा, उस शुद्ध चित्त में जो वृत्ति का स्फुरण होता है वही उत्थान राजा है, जो भविष्य की कल्पनाएं करता है और वही शुद्ध परब्रह्म परमात्मा आत्मदेव के आधार से जो फुरना होता है वो उत्थान राजा है और उसी राजा के राज्य में सब लोग दौड़ा दौड़ कर रहे। उस राजा को अगर वश किया जाए, अपने फुरने को अगर वश किया जाए, अपने स्पंदन को अपने संकल्प को अगर वश किया जाए तो इतना महान राजा वश हो जाए कि देवी देवता सब जिसका पूजन करते जिसके आगे नतमस्तक है वो राजा तुम अपना बना लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। ये बड़े में बड़ा राजा है। एक विचार उठा और दूसरा उठने को बीच की जो अवस्था है वो अपनी है, लेकिन जो उत्थान होता है इस उत्थान उत्थान के पीछे इंद्रियां बुद्धि मन दौड़ते हैं और जीव दीन भाव को प्राप्त होता है। अगर इस उत्थान को फुरने के उत्थान के समय जो फुरना उठाए स्पंदन उठाए, स्पंदन उठते समय अगर सावधान रह जाए तो एक उत्थान हुआ अब दूसरा होने को है, उसके बीच की अवस्था में अगर टिक जाए, हे पुत्र, उसका तो कल्याण हो जाएगा लेकिन उसकी मीठी नजर जिस पे पड़े उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये बहुत कीमती वचन है, ध्यान से सुनना इसको। एक विचार उठता है और दूसरा उठने को है, तो जैसे एक तरंग उठा और दूसरा उठने को है तो बीच की अवस्था सपाटी है पानी की, ऐसे ही शुद्ध परब्रह्म परमात्मा जो सारे ब्रह्मांडों का अधिष्ठान आधार है वो तुम्हारे हृदय में भी है। जैसे आकाश सर्वत्र है तो घड़े में भी है, ऐसे चिदाकाश सर्वत्र है तो तुम्हारे हृदय में भी है। तो उसकी सत्ता से एक विचार उठा, अब दूसरा उठने को है। तो एक उठा जो है ना, उत्थान जो हुआ, ये उत्थान जो हुआ उस उत्थान के अनुसार लग जाए प्रेस में तो जीव हो गया, और उत्थान को निहारे और उत्थान के आधार को खोजे श्रेयस है। जय जय। बड़ा सरल है लेकिन बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म चाहिए, हमारा निश्चय थोड़ा चाहिए कि हमें श्रेयस को वर्ण करना है, प्रेयस को नहीं। तो धीर पुरुष हैं वो श्रेयस को लेने में थोड़ी सहन शक्ति रखते हैं, थोड़ा धीरज रखते हैं, लेकिन जो मूढ़ पुरुष हैं वो क्षणिक सुख, क्षणिक विनोद, क्षणिक हास्य, क्षणिक विलास, क्षणिक इंद्रियों को एहसास कराने वाले परिस्थितियां या भोग में बह जाते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष हैं वो क्षणिक नहीं, वे शाश्वत को खोजते हैं। हिमालय में कुछ माइयां जो थी ना, वो एक चश्मा बह रहा था, कंकड़ पत्थर डाल रही है, फिर साफ कर रही, फिर डाल रही, फिर देख रही। बाबा जी ने पूछा कि क्या करती हो, कि बाबा जी ये झरने में से सुवर्ण के कण बह के आते हैं, इसलिए उनको खोजने के लिए हम ये मेहनत करती हैं। रोज बह के आते? बोले नहीं, महीनों भर हम मेहनत करते, कभी कभी मिल जाता है, और जब वो स्वर्ण के कण मिल जाते ने तो महीनों भर की मेहनत वसूल हो जाती। परदेश में कोई ऐसी नदी है, सुना गया है कि उस नदी में लोग तेल रगड़कर लंगोटी चढ़ाकर उस नदी में खड़े रहते हैं और हाथ पैर मारते हुए जांच करते रहते हैं उसके रेती के कणों को, महीनों भर खड़े रहते हैं और वही प्रक्रिया में रहते हैं। रोज रोज तो उन्हें सोना नहीं मिलता, हीरे हीरे नहीं मिलते, हीरे बह के आते, लेकिन कभी एक आध हीरा मिल जाता है बढ़िया, तो पूरे जीवन में एक बार हीरा भी मिल जाता है तो अपना परिश्रम वसूल मान लेते हैं, इतना वो कीमती हीरे बहते। ऐसे ही जो श्रेयस के तरफ चलता है तो दिन रात प्रयत्न करे, प्रतिदिन प्रयास करे, और जीवन के अंतिम क्षण में भी आत्मज्ञान का हीरा आ जाए तो परदेश की नदी के हीरों की कीमत क्या है। श्री राम। तो जो धीर हैं वे हीरे खोज पाते हैं, जो धीर हैं वे स्वर्ण के कण ले पाते हैं। तो संसार के सोने के कण लेने हो या हीरे खोजने हो, तभी भी थोड़ा साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, धीरजता चाहिए। तो हीरों का हीरा जो परब्रह्म परमात्मा है, उस परमात्मा का कितना मूल्य होना चाहिए, उसको खोजने के लिए कितनी धीरज होनी चाहिए। तो जो धीर पुरुष हैं वो प्रेयस को छोड़कर श्रेयस का मार्ग पकड़ते हैं, लेकिन जो अधीर है, बुद्धू है, अल्पमति के हैं, वो जरा से सुख में, जरा से दुख में बस ईश्वर का रास्ता छोड़ देंगे, फरियाद करेंगे। जो मंजिल पर चलते हैं वो शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वे कम वक्त पहुंचा नहीं करते। तो जो श्रेयस के मार्ग में होता है ना, वो जो भी परिस्थितियां आती है उसका सदुपयोग करता है, दुख का भी सदुपयोग करता है, सुख का भी सदुपयोग करता है, मान का भी सदुपयोग करता है, अपमान का भी सदुपयोग करता है। लेकिन जो श्रेयस जिसका लक्ष्य नहीं है, रोटी खाना जिसका लक्ष्य है, वाहवाही जिसका लक्ष्य है, या बड़ा कहलाना जिसका लक्ष्य है, उसके बड़प्पन में जरा विघ्न आया, हालो बांधो पोटला। तो हमारा लक्ष्य श्रेयस होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए। ये जो झगड़े हैं, अशांति है, कलह है, विरोध है, बकवास है, अफवाह है, संघर्ष है, इनके मूल में क्या है कि प्रेयस है। जय जय। मूल में क्या है कि संसार है, उसीलिए संघर्ष होता है। अगर मूल में ईश्वर को रख दें, आहा महाराज, संसार नंदनवन बन जाए। विवेकानंद बोलते हैं कि पृथ्वी का लाखवां हिस्सा, लाख आदमी में एक आदमी, पृथ्वी का लाखवां हिस्सा लोग अगर ब्रह्म चिंतन में संलग्न हो जाए तो आधा घंटा में सारी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। इतना श्रेयस के चिंतन का प्रभाव है। तो स्थूल शरीर की क्रिया शुभाशुभ, सूक्ष्म शरीर का चिंतन शुभाशुभ, और कारण शरीर का अवस्था समाधि या निद्रा, ये तीनों में जीव भटकता है। कभी स्थूल शरीर में शुभाशुभ क्रिया करके कर्ता बनता है, कभी सूक्ष्म शरीर में चिंतन करके कर्ता बनता है, कभी कारण शरीर में समाधि या निद्रा करके निद्रा का कर्ता बनता है। जीव अपने श्रेय स्वरूप का लक्ष्य न रखता हुए कई जन्मों तक इन्हीं तीनों शरीर में घूमता रहता है। ये तीन शरीर अवस्था है, ये स्वरूप नहीं अवस्था है, निद्रा अवस्था समाधि अवस्था। तो स्थूल क्रिया की अपेक्षा सूक्ष्म चिंतन में व्यापकता होती है, मेहनत कम पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म चिंतन में थोड़ा रस आता है, वहां भी चिंतन करने वाला थक जाता है, फिर निद्रा में चला जाएगा या समाधि में चला जाएगा, लेकिन वहां भी समाधि भी कारण शरीर की अवस्था है, वहां भी सदा नहीं रह सकता। लेकिन जो सदा है उसको अपना स्वरूप मान ले तो फिर कभी कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, वो मुक्त आत्मा हो जाता है, वो महाधीर है। तो जो धीर है वो श्रेयस को वरण करता है, जो धीर है वो श्रेयस चाहता है, और जो मूढ़ है वो प्रेयस चाहता है। तो दासुर ने अपने पुत्र को आत्मज्ञान का उपदेश देकर धीर बना दिया। 10 वर्ष का व्यक्ति बच्चा अगर धीर बन सकता है, साक्षात्कार कर सकता है, तो हम 25-50 साल के साक्षात्कार कर ले या धीर बन जाए इसमें संदेह क्या है। लेकिन वरण हमारा होना चाहिए। आदत बन गई चंचलता की, आदत बन गई प्रेयस की, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन भैया जो सम्राट प्रसन्न हुआ है वो तुम्हें राज्य अभिषेक करने की तैयारियां करता है, और तुम बोलते तो चारा ना दे दो चना खाएं, दो आना दे दो फूफा खाएं। ऐसे संत जब आत्मज्ञान सुनाकर तुम्हारे को जन्म जन्म के सदा के लिए जन्म जन्म के दुखों से छुड़ा देना चाहते हैं, उन संतों के आगे भी जो तृष्णावान है ना, महाराज ये हो जाए तो अच्छा, ओ हो जाए तो अच्छा, ओ हो जाए तो अच्छा, ओ हो जाए तो अच्छा, ये तो मांगते मांगते मिल भी गया फिर भी रहेगा नहीं। लेकिन वो परमात्मा को तुमने ठीक से अगर प्रीति की, श्रेयस का मार्ग लिया, तो महाराज एक बार ऐसा मिलेगा कि तुमको मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे आगे कई मांगते आएंगे और तृप्त होकर चले जाएंगे, तभी भी तुम्हें अहंकार नहीं होगा। श्रेयस ऐसा ऊंचा है। निज सुख बिन मन होवई की थीरा, जब तक आत्म सुख जीव को नहीं मिला तब तक इसका उद्धार नहीं, कल्याण नहीं। आत्म सुख में परिश्रम है, थोड़ा परिश्रम वास्तव में नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई ना प्रेयस की, आदत पड़ गई इंद्रियों के बहकावे के जीवन की, इसलिए जरा संयम करने में परिश्रम लगता है। कुछ न करना ही आत्मज्ञान का रास्ता है। तन से मेहनत नहीं, मन से चिंतन नहीं, अचिंत्य परमात्मा में गोता मारना, यह आत्मचिंतन का रास। कठिन उसलिए कि आदत पड़ गई चंचलता की, उसलिए चंचलता रोकने में परिश्रम लगता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि 13 पल ये आत्म विचार में रहे तो उसे राजसु यज्ञ करने का फल होता है, 17 पल इस आत्म विचार में रहे तो बाज्य पे यज्ञ करने का फल होता है, आधा घंटा एक आत्मविश्रांति के विचारों में रहे तो अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले तो अनंत फल, जिस फल का कोई अंत नहीं, ऐसा अपने आत्म फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां कठवल्ली का ही आज का श्लोक है, श्रेयस और प्रेयस ये दोनों चीजें हमारे पास आया करती है, हम दोनों में से किसको पसंद करते हैं? लॉलीपॉप चॉकलेट भी आया करते हैं, और कभी कभी हीरे जवाहरात और गिन्नियां भी आते हैं। हम हीरे जवाहरात गिन्नियों को मूल्य देते हैं कि लॉलीपॉप में उलझते हैं? ओम 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 हरि ओम।